Shanti, Om Shanti. आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वशीकरण मंत्र दिया है, जैसे लौकिक में भी गुरु लोग अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं और बाबा ने उसे कहा है ये वशीकरण मंत्र है, वो है बाबा को याद करना। बाबा हर रोज इस बात पे पक्का कराते भी रहते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कही कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उसके लिए बाबा ने दो बातें कही। एक बात कही कि बच्चे पहले खुद पुरुषार्थ करना, फिर अपने लौकिक परिवार मित्र संबंधियों को भी ये ज्ञान सुनाना है, जिसके लिए गायन है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। साथ साथ बाबा ने कहा कि एक कन्या के भी 21 गुण का उद्धार करती है। ये जो गायन है वो कौन कर सकता है, वो ब्रह्मा कुमारी ही कर सकती है। चैरिटी बिगिंस एट होम का प्रैक्टिकल कार्य जो है माताएं कन्याएं भी कर सकती हैं। फिर बाबा ने कहा कि देवताओं के पुजारी जो होंगे उनकी निशानी क्या होगी। जैसे दुनिया वाले हर बार प्रश्न पूछते हैं ना, क्या कहते हैं कि सचयुग में विकार के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा ने कहा जो देवताओं के पुजारी होंगे वो कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि सचयुग में विकारों के बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्योंकि वो तो देवता ही रहे हैं ना। और जो पूछते हैं तो उनका पार्ट जो है वो बाद में है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 21 दिसंबर 2024, मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो। मीठे बच्चे सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद फिर दूसरों को कराना, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज का प्रश्न है सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है। सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है, इसका उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और चैन है। बाप पवित्र दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते ही नहीं। सत्युग में विकार आदि होते नहीं, पवित्रता है वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वे कभी ऐसा पोषण कर ही नहीं सकते कि विकारों बिना दुनिया कैसे चलेगी। अगर तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। कहाँ जाना वो स्मृति रही तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया को भूल जाएंगे। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पति दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी ओम शांति कह सकते। शिव बाबा ओम शांति कहते हैं तो बच्चे भी फिर कहते हैं ओम शांति। तो बाबा ने कहा ओम शांति तो कोई भी कह सकता है, आत्मा को स्वरूप में टिकना है और ओम शांति कह सकते हैं। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, आत्मा क्या कहेगी? ओम शांति, मैं आत्मा शांति के सागर का बच्चा हूँ। सन ऑफ साइलेंस फादर, शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता है। आत्मा तो है ही साइलेंस, आत्मा का गुण स्वरूप जो है वो शांति है, तो जंगल में जाए तो वहाँ क्या करेंगे, लेकिन है तो उसका गुण ना। आत्मा का तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? ये बाप बैठ समझाती है, उस बाप को ही कहती है वहाँ ले चल जहाँ सुख चैन पाए। भक्ति में गाते रहे ना, हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन हो, तो बाबा कहते उस बाप को ही कहते हैं वहाँ ले चल जहाँ सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के लिए पहले क्या चाहिए? पवित्रता। गायन भी है कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है, तो बाबा कहते हैं सुख शांति आपको चाहिए तो उसके लिए पहले क्या करना? पवित्रता है। परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिब्रेट कर पावन दुनिया में ले जाने वाला। शिव बाबा का ये कर्तव्य है कि पतित दुनिया से लिब्रेट करके पावन दुनिया में ले जाते हैं। वह है ही पतित दुनिया से लिब्रेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता और कलयुग में है अपवित्रता। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड और ये है वेशियस वर्ल्ड। ये तो बच्चे जानते हैं कि दुनिया वृद्धि को पाती जाती है। इतनी हालत खराब है और जनसंख्या बढ़ती जा रही। एक तरफ कहेंगे जनसंख्या कंट्रोल करो, जनसंख्या की काउंटिंग करते वो भी एक्यूरेट नहीं कर पाते, तो जनसंख्या तो बढ़ती जाती है क्योंकि सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चे जानते हैं दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वॉइसलेस वर्ल्ड है, तो जो मनुष्य थोड़े होंगे वह थोड़े कौन होंगे? वॉइसलेस में थोड़े मनुष्य हैं, तो बाबा कहते वहां पर जो थोड़े लेकिन हैं कौन कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का राज्य है, उसको ही चैन और सुख की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। ये है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जो बाप ही देंगे, दुनिया में तो कोई दे नहीं सकता, कितना भी उनको कहो सुख देगा, आज प्रॉपर्टी देगा, आज है कल दुख हो जाएगा, कोई लूट के ले जाएगा। जितना उसको प्रॉपर्टी मिली उतना ज्यादा दुखी, उतना ज्यादा टेंशन। तो बाबा कहते सुख का वर्षा केवल एक बाप ही दे सकते हैं। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब ये बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, इसको ही मन मना भाव कहा जाता। मन मना भाव क्या है? सुख धाम और शांति धाम को याद करना। लेकिन कौन करेगी? आत्मा ही तो करेगी ना। तो आत्मा चिंतन करती है, तो बाप आकर बच्चों को बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इसको ही मन मना भव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते। कल भी बाबा बता रहे ना कैसे बाबा ने शुरू में छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार कराया। एक तो साक्षात्कार कराया और स्पष्टीकरण भी किया कि सत्युग क्या है और वहां पर आप कैसे पार्ट बजाएंगे, आपको कैसे होगा। शुरू में तो बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराए थे ना। तो अभी बाबा कहते हैं, बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुख धाम विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है, 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उनके ही 84 जन्म। फिर बाबा कहते हैं, सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन जाते। क्या बात कि हम पहले सत्युग में आए थे, हमारे ही 84 जन्म थे। बाबा कहते हैं, इस इतनी बात को याद करने से ही तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। जो सुख धाम में आते हैं उनके 84 जन्म है। सिर्फ पहले इतनी बात याद करने से ही बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे शांति धाम को याद करो, फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझे, चलते फिरते अपने को वहां के वासी समझेंगे तो ये दुनिया भूलती जाएगी। सत्युग है सुख धाम, परंतु सभी तो सत्युग में आ नहीं सकते हैं। बाबा कहते, सत्युग तो स्थापन करता हूँ लेकिन उसमें कौन आएंगे? केवल तुम बच्चे आएंगे, जो देवी देवता घराना की आत्मा वही आएंगे। ये बातें समझेंगे मैं जो देवताओं के पुजारी हैं। ये है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप ही सिखलाते हैं, बाकी सभी हैं झूठी कमाई। कितनी कमाई करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, किन किन साधनों को अपनाते हैं, क्या नहीं करते हैं, फिर उसमें कितना टेंशन भी हो जाता है। तो बाबा कहते, बाकी सभी हैं झूठी कमाइयां, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से बाबा कहते हैं, द्वापर से लेकर क्या करते आए हैं? द्वापर से लेकर झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई के प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती। कमाई का पुरुषार्थ यहाँ करते हैं, सतयुग में स्टार्ट होती है और त्रेता अंत में जाकर के पूरी होती है। और द्वापर से हमारी फिर भी थोड़ा वो पुरालंड मिल चलती है, लेकिन फिर जैसे जैसे कर्म करते हैं तो हमारी कमाई ऊपर नीचे होती है। अर्थात आधा कल्प भोगते हो, फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्प काल क्षण भंकुर सुख मिलता है। ये अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते। सच्ची कमाई कौन कराते? बाबा ही कराते हैं। और वो सच्ची कमाई कौन सी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों के सच्ची कमाई सच्चा बाप ही कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब जूठ खंड बना है और खंडों को सचखंड जूठ खंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबा ने स्थापन किया है और वो सचखंड था और बाकी खंड तो द्वापर में आते ना, तो उनको सचखंड या जूठ खंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है, कहते हैं सच्चा बादशाह है, सच स्थापन करते, तो बाबा कहते सचखंड बनाने वाला बादशाह कौन है? शिव बाबा हैं। सच्चा एक गॉड फादर है, बाकी है झूठे फादर। सच्चू में भी सच्चे फादर मिलते हैं, सच्चू में जो पिता होंगे मात पिता होंगे वो भी बिल्कुल रॉयल पवित्र और उनके अंदर सच्चाई, कोई भी झूठ कपट नहीं, क्योंकि दिव्य गुणों से संपन्न है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सच्चू में सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता ही नहीं है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया और वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए क्या करना है? बाबा कहते इतनी सहज है, सच्ची कमाई है, तो इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को सच्ची कमाई कराने। अब बाबा ने क्या बताया कि कन्या तो अपने घर में रहती है, खुद कमाई करके अपने पियर घर के, माताएं घर ससुर घर में रहती हैं, तो उनके तो बहुत गृहस्थी होती है। तो इसलिए बाबा ने दोनों बातें कह दी, पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे भाई बहने होते हैं, कई ऐसे भी भाई हम देखते हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए बड़े बड़े शहरों में चले गया, उनको लगता हमारा गांव है, गांव के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। तो सोचते हैं गांव में भी कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो आकर के अपने अपने गांव में आकर के सेंटर खोलते हैं और गांव में आकर के इतनी अच्छी सेवा करते हैं। तो बाबा जो कहते पहले खुद की करो, फिर परिवार की करो, फिर अपने गांव की करो, अपने शहर की करो, तो कई आकर के इतनी अच्छी सेवा करते भी हैं। कई जगह पर देखा बताते हैं कि फलाने ने आया अपने गांव में सेवा, यहाँ कई जगह से जाते हैं अपने गांव में जाकर के सेंटर खोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और सच्चे घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कभी उसको कहेंगे तू भगवान है, कण में भगवान है, मिट्टी में भगवान है, ठिकर भीतर में भगवान है, कभी किसको पूजेंगे, कभी किसको पूजेंगे, तो उनकी भक्ति तो सच्ची होती नहीं है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप हैं, फिर भक्ति किसकी करते हो? तो इसी दुबे से निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? अब सन्यासी तो अपना घर बार छोड़ के चला गया है, वो थोड़ी घर में आकर के ये ज्ञान सुनाएगा बताएगा। तो बाबा कहते वो कर ही नहीं सकते है ना, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया अपना घर बार, बाहर के लोगों को ज्ञान सुनाएंगे लेकिन अपने घर में वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता पड़ जाता है। कई कई सन्यासी तो अच्छे रियल सन्यासी, कई तो घर छोड़ करके सन्यासी बने हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सन्यासी लोग चैरिटी बिजनेस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वे घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं। कई बार बाबा के पास कोई सन्यासी आते थे ना, बाबा भी गुरुओं के पास जाते थे, सन्यासियों के पास जाते थे, बाबा उनसे पूछते थे आपने घर बार क्यों छोड़ा, आपके परिवार में कौन थे, क्या कारण था। कोई तो अच्छे ऐसे थे जो बाबा को बता देते थे, कोई तो ऐसे थे कहते बाबा पुरानी बात क्यों पूछते हो, तो वो बताते ही नहीं थे। तो बाबा कहते पहले तो वो घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पढ़ना चाहिए ना कि तुमने सन्यास क्यों लिया। कहीं तो सुनाते हैं उनको वैराग्य वृत्ति थी इसलिए चले गए, कहीं घर बार छोड़ के चले गए। जो रियल है वो तो सब सुनाते हैं, कई जो हैं ऐसे ऐसे वो नहीं सुनाते। तो बाबा कहते मालूम तो पढ़ना चाहिए ना, बतलाने में क्या है कि जो सच्चाई वो बताऊं। फलाने घर की थी, फिर सन्यास धारण किया, तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। अभी आपसे पूछेंगे आप ब्रह्मा कुमार क्यों बने, तो बाबा कहते तुम तो बतला सकते हो ना, तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे कि तुमको ये ज्ञान किसने सुनाया। शुरू शुरू में क्या था, इन सन्यासियों को सुनाते थे, पहले तो वो सुनते नहीं थे, कई कई मान भी लेते थे। वो कहते थे हम अपने फॉलोअर्स को ये बातें नहीं सुनाएंगे, अगर सुनाएंगे तो पूछेंगे कि किसने बताया, आप ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर बन गए, तो इसलिए वो बताते ही नहीं थे, शांत रहते थे। और अभी भी सन्यासियों के प्रोग्राम होते हैं ना, वो कहते ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य करे, बहुत अच्छा करे, लेकिन ये नहीं। कोई कोई स्थान पर है जो बताते हैं थोड़ा सा ज्ञान की बात, नहीं तो अच्छा कार्य करे ऐसा बताते हैं। उनको पूछेंगे कि तुमको ये ज्ञान किसने सुनाया, कहेंगे बीके ने, तो सारा ही उनका धंधा खलास हो जाए। वो कहेंगे तुमको उसने सुनाया तो हम भी वहां जाते हैं। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा, ये कोई फिर कोई खाना भी बंद नहीं कर दे, इसलिए सन्यासियों के लिए बहुत मुश्किल है। बाबा ने शुरू में कहा था ऐसे शुरू में जल्दी नहीं सुनेंगे, जल्दी आएंगे नहीं, हालांकि अच्छा भी लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे संपर्क में आएंगे, वो तो भी आ भी रहे हैं। फिर कोई खाना भी बंद न कर दे, इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधी आदि को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतनी शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नींद है। ड्रामा कभी ऐसा बना हुआ है, शास्त्र बनेंगे, मंदिर बनेंगे, अलग अलग धर्म वाले आएंगे, वो भी उनका पार्ट फिक्स है। तो बाबा कहते हैं बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नींद है। पति दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सचु को 5000 वर्ष पूरे हुए, पति दुनिया उन्हों को तो कलयुग की आयु ही, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुखदान कहाँ है, कब होगा। वह तो कहते हैं पहले महाप्रलय होती है, फिर सत्युग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। अब बाबा बताते आप सोच सकते हैं कि पीपल के पत्ते के ऊपर कोई बैठ भी सकता है क्या। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, एक जैसे सिंबॉलिक बताया हुआ है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसते सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब बात कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। भक्ति मार्ग में है ना, विष्णु का चित्र दिखाते उसके नाभि कमल से क्या करते हैं, ब्रह्मा का दिखाते हैं, फिर हाथ में शास्त्र भी दिखाते। बाबा कहते ये सब क्यों दिखाते हैं, क्योंकि बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही ये सारा ज्ञान देते हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वर्तन में तो शास्त्र आदि नहीं होंगे, और ब्रह्मा भी यहाँ होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना है। तो बाबा कहते ब्रह्मा भी यहाँ स्थूल दुनिया में होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी यहाँ होते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, सो विष्णु सो ब्रह्मा बनता है, अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, वह विष्णु से ब्रह्मा निकलता। अब बाबा कहते ये भी है क्वेश्चन है कि ब्रह्मा से विष्णु निकलता है या विष्णु से ब्रह्मा निकलता, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। पहले जब ब्रह्मा है फिर उसके द्वारा वही जाके विष्णु बनता है, फिर विष्णु जब बाद में जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते लास्ट में आकर के शिव बाबा उसको ब्रह्मा बनाते हैं। अब ब्रह्मा से विष्णु निकला या विष्णु से ब्रह्मा निकला, ये सब समझने की बातें हैं। परंतु इन बातों को समझेंगे वो कौन समझेंगे? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे वो इन बातों को समझ सकते हैं। परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे, जब तक इस शरीर में है तब तक पढ़ते ही रहेंगे, पुरुषार्थ करते ही रहेंगे और बाबा ने जो ज्ञान दिया उसकी गहराई में जाते ही रहेंगे। जिसे बाबा कहते हैं, बाप कहते जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो, तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। बाबा याद दिला रहे तुम पहले क्या थे, फिर अभी हालत क्या हो गई, अभी फिर बाबा तुमको वैसा बना रहे हैं, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना न सके, तुम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो, तुम सुख धाम में बहुत चैन में। सुख धाम को याद करो कैसे हम रहते थे, हर प्रकार का सुख था, कोई भी कमी नहीं थे, बड़े बड़े महल थे, क्या नहीं था। बाबा ने भी उस दिन कहा ना हर बच्चे को भी अपना पुष्पक विमान होगा और विमान भी एक्सीडेंट प्रूफ होंगे, बच्चा बैठेगा बटन दबाएगा और कहीं भी चक्कर लगा के आएगा। तो बाबा कितने सतयुग के अंदर सुख धाम है, कितने सुख चैन थे, अब बेचैन है। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो, इस्लामी बोधी सिख ईसाई मठ पंथ सब कितना जन्म लेंगे। बाबा कहते इनके सब आप जन्मों का निकाल सकते हो। एक बार किसी ने जन्मों का सारा लिस्ट निकाला और बाबा को भेजा, बाबा ने कहा ये क्या किया, टाइम वेस्ट किया, बाबा को याद किया? तो बाबा तो अप्रोक्सीमेट बताते, एक एक के पीछे लगेंगे, एक एक के लिए करते रहेंगे तो कितना टाइम एनर्जी माइंड लगाना पड़ता है। तो बाबा कहते बाबा तो केवल ये बताते कि 84 जन्म है, फिर कैसे धर्म अलग अलग आते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते वैसे तुम बता सकते हो, ये हिसाब निकालना तो सहज है, स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। बाबा ने पहले भी बताया था कि स्वर्ग के मालिक कौन बनेंगे, जो भारतवासी ही बनेंगे, बाकी धर्म वाले तो बाद में आते हैं ना। जिसलिए बाबा बता रहे हैं कि स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, ये है समझाने, खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। कई परिवार हैं, एक छोटा बच्चा ज्ञान में आया वो अपने माता पिता को ले आया, पहले बहन आई तो अपने पति को ले आई, बच्ची आई तो अपने परिवार वालों को लाए। तो बाबा ने कहा कई ऐसे भाई बहने हैं तो देखते हैं कि कितने लोग हैं जो अपने परिवार वालों को ज्ञान में लेकर के आए हैं। है कोई बैठा जो परिवार वालों को ज्ञान में लाया हो? हाथ खड़ा करो। बहुत है, देखो माताएं बहुत है, और भाइयों में भाइयों को उनके परिवार वालों ने लाया, खुद नहीं है। कई कई भाई ज्ञान में चलते हैं तो वो अपने माता पिता को ले आते हैं, अपनी पत्नी को लाते, बच्चों को लाते। माताओं का रिकॉर्ड ही ज्यादा है क्योंकि माताएं ज्ञान में चलती हैं, बच्चों को ले आएंगी और कैसे ले आते, उनको टोली खिलाती रहती, गुरुवार का भोग लेकर के जाएंगी और बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं। जब आएंगे टोली ही मांगते, गुरुवार के भोग से ही वो बहुत खुश हो जाते हैं और भोग खाते खाते बाबा के बच्चे बन जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है कि जिन्होंने भोग खाते खाते बाबा के घर की टोली खाते खाते वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम, पियर घर और ससुर घर को भी नॉलेज सुनानी पड़े। कन्या अपने घर में रहे, घर में रहती है तो अपने परिवार को घर को सुनाए, और माताएं जो है वो तो दोनों तरफ अपने पियर घर को भी और ससुर घर को सुना सकती हैं। धंधे में भी तो बाबा कहते हैं ससुर घर को नॉलेज सुनानी, धंधे में भी पहले अपने भाइयों को भागीदार बनाते हैं ना। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे देखते हैं बिजनेसमैन वाले क्या करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं तो क्या करते हैं, समझते अपने रिलेशन में कोई वो पार्टनरशिप रखते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम, पियर घर ससुर घर को भी नॉलेज सुनानी पड़े, धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। यहाँ भी ऐसा है, अब हमें कौन से धंधे में, ज्ञान रत्नों के धंधे में अपने ही लौकिक परिवार को समझाना है, उनको भी सब कुछ समझा करके बाबा का बच्चा बना सकते हैं। यहाँ भी ऐसे गाय भी है कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे, कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे, अपवित्र तो उद्धार कर नहीं सकते हैं। तब कौन सी कन्या है, बाबा पूछते कौन सी कन्या का गायन है, तब कौन सी कन्या है, ये ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना, आप सब ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा कहते तुम सारे सबका कल्याण कर सकते, ये ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना, यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ, अधर कुमारी का मंदिर है ना, कितने भगत लोग आते कितना पैदल करके आते हैं, कहाँ कहाँ से दूर से आते, कई बार हम देखते हैं वो आबू रोड से ऊपर आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं, इतना करते हैं मेहनत करते हैं कि एक देवी के दर्शन करने के लिए, साक्षात में बाबा देवी बनाते हैं, तो आप सोचो कितना ना भाग्यशाली होंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ अदर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ तुम्हारे यादगार भी बने हुए हैं, हम फिर से आए हैं, पहले भी आए थे अभी भी आए हैं, बाबा ने ही यादगार बनवाए और वो यादगार के स्थान पर आए हैं, हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, ये दिल वाला मंदिर भी बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा दिल वाला मंदिर की बहुत महिमा करते हैं, कैसे नीचे तपस्या कर रहे हैं और फिर तपस्या के बाद फिर कैसे स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग का भी उन्होंने ऊपर दृश्य दिखाया है। तो बाबा इसको बहुत महिमा भी करते और सबको बोलते थे जाकर के दिलवाड़ा मंदिर जरूर देखो, लेकिन बाबा हमेशा ध्यान भी खिंचवाते थे, ऐसा नहीं कि वहां जाकर के बोलो ये मेरी कोठड़ी है, लेकिन बाबा कहते अभी कोठड़ी में बैठ कर तपस्या करो, तब जाके सच्ची में ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग तो है ही यहाँ, वहाँ ऊपर दिखाया है, लेकिन बाबा की तो स्वर्ग यहाँ होता है लेकिन वहाँ जगह नहीं है तो दिखाना तो पड़ेगा ना, वो स्वर्ग को लोग ऊपर समझते हैं, लेकिन बाबा की तो स्वर्ग तो है यहाँ, राज्यों की तपस्या भी यहाँ ही होती है, जिन्हों का मंदिर है उनको ये जानना चाहिए न, अब अंदर जगत पिता जगत अम्मा आदि देव आदि देवी बैठी है, वहाँ पर जगत माता जगत पिता आदि देव आदि देवी भी उनकी वो बनी हुई है, जहाँ पर वो दिखाते हैं, जहाँ पर जगत पिता जगत माता आदि देव आदि देवी बैठे हैं, अच्छा आदिदेव किसका बच्चा था? अब आदिदेव किसका बच्चा था? कहेंगे शिव बाबा का। अदर कुमारी और कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति जीवन मुक्ति को याद करो। तुम्हारा ये सन्यास है। क्या सन्यास है? सब कुछ करते हुए भी मुक्ति और जीवन मुक्ति को याद करना, रहना घर में है, परिवार में रहना है, कारोबार करना, सब कुछ करना है, लेकिन मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति को याद करना है। तुम्हारा ये सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है, बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। जब जैन धर्म एडॉप्ट करते हैं, बनते हैं, जैनी बनते हैं, तो कितना वो कष्ट करते हैं, लेते हैं कि उनके वो सिर के बाल निकालते, एक एक करके निकालते। तो बाबा कहते हैं बाबा तो यहाँ बच्चों को कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा तो और ही सबको कैसे रखते थे, एकदम शाही ठाट में, राजाई ठाट में। बाबा कहते थे ये मेरे होमनहार प्रिंस प्रिंसेस है और ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा ने तो कितनी पालना की, कोई भी कठिनाई नहीं, कोई भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं। तो बाबा कहते हैं बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग, ये है ही प्रवृत्ति मार्ग का, ये ड्रामा में मूल है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे, जैन धर्म कहेंगे ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो शुरू से ही है ही है, लेकिन वो तो जैन धर्म कहेंगे ना। वह तो अब प्राय लोप हो गया है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, ये भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है, एडम आदम बीबी, एडम ईव भी कहते हैं। आदि देव ब्रह्मा, आदम बीबी भी कहते हैं, एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे का ये हेड है। ब्रह्मा ही मनुष्य सृष्टि के सिजरे का हेड है। ये राज भी बाप समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए ना। ये भी ज्ञान सागर बाप बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। ये परमात्मा की महिमा कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते। भक्ति में गाते जरूर रहेंगे, लेकिन वो कौन है, उसका जिसकी ये महिमा वो कौन है वो नहीं जानते ना। इसे बाबा को कहना पड़ता है ये महिमा साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करते हो। बाबा इनको बता रहे हैं, देखो तुम एक तरफ कहते हो सर्वव्यापी, फिर तुम इतनी महिमा किसकी करते हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें। परमात्मा को न जानने के कारण ये अपने को शिवो हम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी। भक्ति में भी परमात्मा की महिमा के लिए कितना कहते हैं कि सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, वृक्षों को कलम बनाओ, तो भी महिमा लिखी नहीं जाती। एक तरफ महिमा का गायन करते हैं और दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर बाबा कहते हैं नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो फिर क्या हुआ कि हम उनकी रचना हुए। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि हमको खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे ना। रचना और रचाई, रचना को वर्षा दे नहीं सकते। रचयिता अलग है, हम सब रचना है, तो बाबा कहते रचना रचना को वर्षा दे नहीं सकते, क्रिएशन को क्रिएटर से ही वर्षा मिलता है। इस बात को भी कोई नहीं समझते हैं। वे बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। श्री बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी शिव बाबा को है। तो बाबा कहते हैं वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनको है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। मनुष्य के पास ज्ञान होता तो फिर क्यों पुकारते? ये ज्ञान तो बाबा ही आकर के देते ना। मनुष्य के पास और बाकी कई ज्ञान होंगे, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल बाबा ही दे सकते हैं। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज भी उनमें होगी। वही आकर तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ये भी बोर्ड लगा देना चाहिए। शुरू में बाबा हमेशा कहते थे, आजकल तो सब जगह बोर्ड लगे हुए, आजकल तो बोर्ड लगाते ब्रह्मा कुमारी से ईश्वर विश्वविद्यालय, लेकिन उसमें बाबा कहते थे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनना हो तो आओ ऐसा बोर्ड लगा दो, मुक्ति जीवन मुक्ति आपका ईश्वर जन्म से अधिकार है। बाबा कहते थे ऐसे बोर्ड लगा दो, तो ऐसे ऐसे बोर्ड लगाने से उनको क्वेश्चन आता था ये क्या है। और अभी तो ब्रह्मा कुमारी इसको जान गए है ना। ये भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस, तो बाबा हमेशा के बहुत ध्यान खिंचवाते थे। बाबा ने पहले से सर्विस की बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई थी, और उन युक्तियों से बाबा के बच्चे सेवा करते करते बाबा का ज्ञान कहाँ कहाँ तक सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सा बोर्ड लगाना है, इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाओ। बाहर चक्र का चित्र लगा दो और उसके आगे लिख दो, इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाओगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है तब तक क्या करना है, बाबा कहते जब तक जीना है तब तक मुझे याद करना। बाबा कहते ज्ञान तो सुनना ही है, लेकिन ज्ञान की बातों को कभी धारण किया कभी भूल जाती है, लेकिन बाबा कहते याद करना है। बाप कहते जब तक जीना है मुझे याद करना है, मैं खुद तुमको ये वशीकरण मंत्र देता हूँ। कौन सा? कि बाप को याद करना है। अब तुमको याद करना है बाप को, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये स्वदर्शी चक्र फिरता रहे तो फिर क्या होगा? श्री कृष्ण के लिए दिखाते ना, स्वदर्शन चक्र फिराया औरों के गले कट गए। तो बाबा कहते ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा, माया का गला कट जाएगा। बाबा कहते ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, तुम फिर सतो प्रधान शरीर लेंगे, वहां तो विकार होता ही नहीं। कहते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चले। शुरू में बहुत बिगड़ते थे पवित्रता के कारण, बहुत लोग ऐसे हंगामे करते थे, कहते थे विकारों के बिना सृष्टि कैसे चलेगी, ये क्यों ऐसे करते हैं, ये कौन सा धर्म है, बहुत कुछ ऐसे करते थे। लेकिन अभी तो वो सब मानते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां विकार होता ही नहीं है। कहते विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। देवता निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न है। तो बाबा कहते वो नहीं मानते तो बोल दो कोई बात नहीं। तुम देवताओं के पुजारी नहीं हो, देवता धर्म में आने वाले भी नहीं, तो उनको बोलो कि तुम देवताओं के पुजारी नहीं हो, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हो ना संपूर्ण निर्विकारी। तो सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कहते ना, तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते है ना संपूर्ण निर्विकारी। जगत अम्बा जगत पिता निर्विकारी है, राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं, तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। तपस्या की पुण्य आत्मा बनने के लिए, और पुण्य आत्मा ही जाकर के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तपस्या करते हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। माया आएगी नहीं स्वदर्शन चक्र को देख के, तो बाबा कहते माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संतुष्टता भी बहुत बड़ी संपत्ति है। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं, वह सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। हद की इच्छाओं की अविद्या, जिसका हद की इच्छाएं क्या है उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है, उसको क्या कहेंगे संपत्तिवान। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वह अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल है। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल है। अभी इसके बाद हम सुनेंगे अव्यक्त इशारा और आज का स्वमान। पहले हम सुनते आज का स्वमान, फिर सुनेंगे अव्यक्त इशारा। आज का स्वमान है 21 तारीख 21 दिसंबर। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। स्वमान है, मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। योग अभ्यास मैं तपस्वी आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा की संपन्न और शक्तिशाली स्थिति से प्रारब्ध स्वरूप का अनुभव हो रहा है। मेहनत से मुक्त परमात्म स्नेह में समाने का अनुभव कर रही हूँ। परमात्म शक्तियों से संपन्न बन सर्व को संपन्न बना रही हूँ। धारणा है मनसा में सदा समर्थ संकल्प ही रहे। चिंतन है संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है। चिंतन संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है। अभी हम सुनेंगे आज का आवृत्ति इशारा। आज किस तारीख है? आज का आवृत्ति इशारा सदा आज्ञाकारी बनकर रहो तो सर्व की दुआएं मिलेंगी। उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं लेकिन मन की संतुष्टता और मन की संतुष्टता यथार्थ है। बाहर से संतुष्ट दिखाई दे लेकिन मन असंतुष्ट हो तो बाबा कहते हैं बाहर की संतुष्टता नहीं लेकिन मन की संतुष्टता यथार्थ है। आज्ञाकारी है दुआएं हैं तो सदा स्वयं और सर डबल लाइट रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा। क्यों क्या कैसे ये सब प्रश्न समाप्त। कई बातों में आता नहीं क्यों हुआ कैसा हुआ तो बाबा कहते क्यों क्या कैसे ये सब प्रश्न समाप्त होंगे। अच्छा ओम शांति। अभी सब भाई बहने बैठे रहेंगे। एक बहुत सूचना खुश खबरी की आपको सुना रहे हैं। आप सबको बता रहे बाबा तो बच्चों को हमेशा सिखाते योग में रहो और हम सब ने पहले से ही जो थर्ड हर महीने के थर्ड संडे को शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक इंटरनेशनल मेडिटेशन और पूरे वर्ल्ड में सभी सेवा केंद्रों पर चलता है। और अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया गया। ताली बजाओ ना। बाबा का ज्ञान देखो कैसे धीरे से गुप्त रीति से तो यूनाइटेड नेशन द्वारा 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे अनाउंस कर दिया गया है। और इसके लिए सर्कुलर भी सभी सेंटर्स पर भेजा था देश विदेश में। वहां पर मेडिटेशन के कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं और इसके लिए शांति वन में भी आज विशाल कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर हम सब अपनी स्थिति को इतना पावरफुल और योग युक्त बनाकर रखेंगे। हमको ही बाबा ने सिखाया है बाबा ने ही हम सबको निमित्त बनाया है। इसलिए हम अपना सूक्ष्म में मेडिटेशन के द्वारा साकाश देते रहेंगे। अच्छा ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। और अभी तो क्रिसमस हॉलीडे आ रहा है जिसके लिए काफी संख्या में डबल विदेशी भाई बहने आ रहे हैं। और क्रिसमस के टाइम पर विदेश के बच्चों का भी इंटरनेशनल रिट्रीट होती है और विदेश के जो युवा ग्रुप है उनकी भी यूथ की रिट्रीट होती है। और इस ग्रुप में काफी सारे आएंगे। अभी एक दो दिन में आना शुरू होगा। अच्छा ओम।